जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में बात हो रही थी, जिसको उपनिषद में ब्रह्म कहा जाता है, जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है। तो जो जिसको ब्रह्म कहा जाता है वह उनकी अंग कांति है, उनके अंग से निकलने वाली ज्योति है। जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है वह उनके अंश हैं। और अब यहाँ पे बात जो विषय हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण साक्षात नारायण है, और उसके लिए ब्रह्मा जी की जो उक्ति थी 14वें अध्याय दशम स्कंद, ऑडियो किसका बज रहा है, एनीवेज, और उसमें बात आई थी नारायणस्त्वम नहि सर्वदेहनाम आत्मस्य धीशा खिललोक साक्षी, ये श्लोक की व्याख्या चल रही है। तो उसी में आगे बात आई थी कि क्या आप नारायण नहीं हैं, और नारायण शब्द के अर्थ लिए गए थे कि जो पुरुष हैं, जो तीन पुरुष हैं गर्भो कारुणदकशायी गर्भोदकशायी और शिरोदकशायी, उनके भी पालन करने वाले हैं, इसलिए भी आप नारायण हैं। आगे आज आपके सामने श्लोक है, श्लोक क्रमांक 53 कहाँ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी लोगों ने 1, 2, 22 पढ़ लिया होगा, जिसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साक्षात कृष्ण होने के प्रमाण भी बताए गए थे। अभी हम लोग 53 को देख रहे हैं, 53 इसमें मुझे क्यों नहीं दिख रहा, 53 हाँ ठीक है वही है, मेरे पीछे बोलिए, विराट हिरण्य गर्भश्च कारण चेत्य उपाधय
कारणम चेत्य उपाधय
ईशस्य यत्त्रिभिर्हीनम
ईशस्य यत्त्रिभिर्हीनम
तुरीयम यत्प्रचक्षते
तुरीयम तत्प्रचक्षते।
यहाँ पे एक बात पिछले श्लोक में 52 में आई थी कि ऐसा लगता है कि इन पुरुषों का, यानी कि गर्भोदकशायी विष्णु, शिरोदकशायी विष्णु और महाविष्णु का संबंध माया से है, लेकिन वस्तुतः ये तीनों उससे परे हैं। तो इस बात को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विराट के रूप में और आत्मा के रूप में और कारण के रूप में इन ये पुरुष की उपाधि मात्र हैं और वह इन उपाधियों से परे हैं। ये श्रीधर स्वामी की टीका से ले गया है 11, 15, 16। कहने का मतलब है इनको विराट पुरुष के रूप में बोलते हैं और हिरण्य गर्भ के रूप में बोलते हैं, या फिर कारण के जगत के कारण के रूप में बोलते हैं। ये उपाधि दी गई, जैसे कि हमको एक उपाधि दी जाती है उस प्रकार से लोग बोलते हैं भगवान विष्णु को, लेकिन इसे भौतिक उपाधियां हैं, भगवान का से कोई संबंध नहीं, ये बात कह रहे थे बस। इसको आप अगले श्लोक से समझ सकते हैं, यद्यपि तीनेर माया लैया व्यवहार तथापि तत्स्पर्शे नाही सभे माया पार। तो कह रहे हैं यद्यपि ये तीनों भगवान भौतिक शक्ति से सीधे संबंधित हैं, मतलब भौतिक शक्ति का संचालन करते हैं। क्या इतना याद हुआ आपको, कारण विष्णु यानी कारणोदकशय विष्णु क्या करते हैं, प्रकृति के तत्वों की सृष्टि करते हैं। गर्भोदकशय विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदकशय विष्णु क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में सभी जीवों में प्रवेश करके उनका नियमन करते हैं। तो कोई सोच सकता है कि इनका माया संबंध तो है तो जरूर प्रभावित होते होंगे, तो कहते नहीं, ये माया के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, ये बात बता रहे हैं वो। उसके बाद आगे का श्लोक देखते हैं, ये तीनों ही माया के पार है, तुरिया अवस्था में स्थित रहते हैं। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै नायुज्यते सदात्मा स्थिर यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। बहुत सुंदर बात है, वो कह रहे हैं एतद ईशनम ईशनम ईशस्य ईशस्य भगवान का ये ईशनम भगवान के ऐश्वर्य को देखो प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै न युज्यते प्रकृति में स्थित है भौतिक जगत में है लेकिन तद्गुणै उस प्रकृति के रजो तमो और सतो गुण से बिल्कुल भी नहीं जुड़ते हैं वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते और क्या कहते हैं सदा आत्मस्थ है वह अपनी दिव्य प्रकृति में तुरिया अवस्था में नित्य ही विद्यमान रहते हैं आप लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं भक्त लोग इधर आगे आ सकते हैं मैं खाना खा के आ गया हूं मुझे पता है हमारे आश्रम से एक भक्त कम हो रहा है आप जानते हैं क्यों क्योंकि मैंने खा जाता हूं जब भूख लगती है लेकिन आज मैं खा के आया हूं प्रसाद तो आज किसी को नहीं खाऊंगा आप लोग सोचते हैं जो डर डर के आ रहे हैं ऐसे लग रहा है आगे भी आएंगे तो प्रश्न करेंगे घबराइए मत आज कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा मुझे पता है नई बातें हैं तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन आपको याद होगा कि हम लोग जब दूसरे अध्याय को पढ़ रहे थे तब भी बात आई थी कई बार आई थी कि भगवान विष्णु का इस भौतिक प्रकृति से सामिप्य और नियामक का संबंध है सामिप्य मतलब समीप है उसके लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर रहे और उदाहरण दिया था चुंबक और लोहे का अच्छा अगर समीप है और स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो फिर नियमित भी नहीं कर रहे होंगे तो कहते नहीं नियमित कर रहे हैं जैसे चुंबक लोहे की कीलों को नियमित कर सकता है कि नहीं जहां चुंबक जाएगा वहीं कीले भी जाएंगी लेकिन चुंबक जरूरी तो नहीं कीलों को स्पर्श करे तो भगवान विष्णु इस जगत की वस्तुओं को नियमित करते हैं वही नियमन कर रहे हैं लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं होते ये उनका दिव्य ऐश्वर्य है जैसे आश्चर्य होगा ना कि मैं जल में आप आगे आ जाओ आगे कि मैं जल में स्पर्श करूं और भीगू नहीं क्या ये आपको आश्चर्य नहीं लगेगा इस जगत में अगर आप कहीं पानी में कूद जाइए और कहें कि पानी में कूदे लेकिन भीगे नहीं बिल्कुल अंदर डूब गए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा तो यही बात आश्चर्य की है और अद्भुत बात यह है कि भगवान अकेले हैं और कभी प्रकृति से प्रभावित नहीं होते और हम सब लोग मिलकर भी प्रकृति से प्रभावित हैं ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ जीव जो है इकट्ठे हो जाएं और कहें हम प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे और भगवान अकेले ही सारी प्रकृति को नियमित कर रहे हैं वो भी सामिप्य संबंध से और बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं यथा बुद्धिस तद आश्रय जिन्होंने अपनी बुद्धि भगवान में स्थित कर ली है वह भी गुणों से प्रभावित नहीं होते तो फिर भगवान के तो कहने की बात क्या है देखिए ये सब सीखना क्यों जरूरी है नहीं तो अगर आप रासलीला सुनेंगे रासलीला सुनना कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन अगर रासलीला को बिना तत्व समझे हम सुनेंगे तो यही समझेंगे कि एक लड़के और लड़की की लीला है लीला मतलब काम व्यापार है और भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर देंगे अगर ऐसा बात होती तो श्रीमद् भागवतम में इस बात को क्यों रखा जाता गोपियों के संग लीला को आप समझ रहे ना मेरी बात और इस कारण से लोग भगवान कृष्ण को ठीक से नहीं समझ पाते मुझे भक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति कहते हैं हम कृष्ण को भगवान मानते हैं लेकिन उनको थोड़ा चरित्र थोड़ा गड़बड़ है तो तुम भगवान क्यों मानते हो ये बताओ एक तरफ कह रहे हो कृष्ण भगवान है और दूसरी तरफ कह रहे हो चरित्र खराब है ये क्या कहना चाहते हो समझ रहे हैं इस बात को तो इसलिए समझना होगा कि भगवान इस जगत में रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते यही तीनों बातों पे तीनों पुरुषों पे घटित होगा से तीन जनेर तुमी परम आश्रय तुमी मूल नारायण इथे के की संशय तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ये तीनों पुरुष कितने अद्भुत हैं प्रकृति में रहते हुए भी गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं तो इनके भी परम आश्रय आप हैं तो आप ही मूल नारायण है इसमें क्या संशय है आप ही मेरे पिता हैं और इसलिए आपको पिता को बेटे का अपराध क्षमा करना चाहिए तो आप क्षमा कर दीजिए यहां पे विषय क्या है थोड़ा समझ लीजिए आपको याद है कि वस्तु निर्देश में तीन बातें बताई गई थी कि ब्रह्म ज्योति भगवान की अंग कांति है परमात्मा भगवान के अंश है और षड ऐश्वर्य रूपी षड ऐश्वर्यों से युक्त जो भगवान है वो और कोई नहीं वह चतुर महाप्रभु भगवान कृष्ण है तो यहां पे इस इन श्लोकों में यह स्थापित किया जा रहा है कि षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कौन है साक्षात कृष्ण है नारायण तो है ही लेकिन नारायण के भी आश्रय हैं भगवान कृष्ण ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सारे श्लोक आपको समझ में आएंगे कि क्यों बोले जा रहे हैं देखिए जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि श्लोक बोले क्यों जा रहे हैं शास्त्र संबंध में होता नहीं है किसी शास्त्र छोड़िए किसी भी बात से कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और हमें यही समझ में नहीं आया कि वो बोल क्यों रहे हैं तो कोई रुचि नहीं आएगी ना छल बाउंदी, कुछ समझ में आया आपको? ये क्यों बोल रहे हैं? छल बाउंदी मतलब होता है वेरी नाइस। अब ये क्या, ये कौन सा संस्कृत बोल दिया छल बाउंदी? अब जो लोग समझते हो समझ गए ना, छल बाउंदी चिरपेंडी तिस्कोंडी। अब कहीं ये कौन सी भाषा बोलने लगे, अभी तक हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, प्रभु जी तेलुगु बोलना शुरू कर देंगे तो और कठिन हो जाएगा। तो समझ में आया कि बात बोल क्यों रहे हैं, तब शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि होती है। आप महसूस कर रहे होंगे इस बात को, तो ये समझ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं, ये स्थापित करने के लिए कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। अब आगे हम पढ़ते हैं। से इति निरंशी पर व्योम नारायण ते हो तुमार विलास तुमी मूल नारायण। इन तीनों के, तीनों का मतलब कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु, इन तीनों के अंशी हैं परव्योम में नारायण। परव्योम मतलब आध्यात्मिक आकाश में नारायण, नारायण के विस्तार के रूप में ये तीनों हैं। तो वह नारायण भी आपके विलास हैं, और आप जानते हैं विलास का अर्थ क्या है, कि वह आकार और भाव में थोड़ा भेद होगा। याद आ रहा है प्रकाश और विलास? यस। ये कहां पढ़ाया था? यही पढ़ाया था। अब देखना, एक आपने शब्द समझ लिया, उसकी डेफिनेशन वो बार बार आएगी तो उसको ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आप मूल नारायण हैं, जिनसे सारे नारायण का उद्भव होता है। किनसे होता है? भगवान कृष्ण से। अतेव ब्रह्म वाक्य पर व्योम नारायण ते हो कृष्ण विलास ए तत्व विवरण। क्या बोल रहे हैं इसमें 58 में? अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार हैं, अब यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। भाई ये बताइए, भगवान नारायण भगवान है कि नहीं है? षड ऐश्वर्य पूर्ण है या नहीं है? अब वह जो ने श्लोक भागवत का कोट किया है 14वें अध्याय का, कौन सा श्लोक था, 30वां था, जो भी था, तो उसके अनुसार ब्रह्मा जी की उक्ति के अनुसार ये समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण ही नारायण के भी स्रोत हैं। और नारायण क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण क्या हुए? षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, स्वयं भगवान, जिनके परे और कोई तत्व नहीं है। इतना बात समझ में आ रही है ना आपको? श्लोक में लिखा था ना, न पर तत्व यह, भगवान कृष्ण के परे, श्रीमन चेतन महाप्रभु के परे कोई तत्व नहीं है। इसको स्थापित कर रहे हैं। एक बात तो यह भी स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, दूसरा यह भी स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, उनकी सत्ता और किसी विष्णु तत्व पे आश्रित नहीं होती, ये बात भी स्थापित कर रहे हैं। हिंदी जैसा लग रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं? भगवान कृष्ण के परे कोई कुछ नहीं। अब ऐसा मत सोचे कि कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। हम लोग एक ब्रह्मचारी के घर में गए थे, प्रभु जी के घर में हमारे मित्र हैं, तो उनके भाई बोलने लगे हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, मतलब वहां कोई अपराध नहीं करेंगे, कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके परे भी कोई कुछ है और उनके उसके परे भी कोई कुछ है। हमने कहा आपके दिमाग में कुछ है? शास्त्र के अनुसार बोल रहे हो या अपने मन से कुछ बोल रहे हो? कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है और कह रहे हैं कि कृष्ण के परे कुछ है। तो इसलिए यहां पे शास्त्र के द्वारा सिद्धांत स्थापित कर लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण के परे किसी की सत्ता नहीं है। ठीक है, ओके। ए श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे इहार सर्वत्राधिकार। ये बहुत सुंदर बात है। यह श्लोक तत्व को बताता है और यह भागवत का सार है। यानी कि जो श्लोक नारायणस्त्वम नहि सर्वदेही नाम, आप ही नारायण हैं, आप ही नारायण आपके अंग हैं इत्यादि, यानी कि भगवान कृष्ण ही सभी नारायणों के मूल हैं, ये श्रीमद् भागवतम का सार है। अब यही बात आप 1.3.28 में भी सीखेंगे जो भी आने वाला है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसको परिभाषा सूत्र कहा जा रहा है। परिभाषा रूपे इहार सर्वत्र अधिकार, इसका अर्थ क्या है समझना होगा। श्रीमद् भागवत में जहां कहीं भी ये आपको दिखे उस श्लोक, किसी श्लोक से कि कृष्ण विष्णु के विस्तार हैं, तो आपको उस श्लोक को उसी तरह समझना होगा मूल परिभाषा सूत्र के अनुसार कि नहीं, विष्णु कृष्ण के विस्तार हैं। इसीलिए कह रहे हैं परिभाषा रूपे इहार सर्वत्र अधिकार। यही बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी 1.3.28 में समझाएंगे कि ये एक परिभाषा सूत्र है। इसका अर्थ क्या है जरा समझिए। जैसे एक रूम में अंधकार है और एक स्थान में दीपक है तो वह पूरे कमरे को आलोकित करता है कि नहीं, तो परिभाषा सूत्र बार बार रिपीट नहीं होते हैं, एक या दो बार ऐसे कह सकते हैं वो है और वह पूरे ग्रंथ को आलोकित कर रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं अभी आने वाला है और ये श्लोक भी आपने देखा जिसमें ये स्थापित हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के संग, इसी समझावट के संग हमें भागवत के किसी भी श्लोक को समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे भी ये बात अब इसको रिजॉल्व करेंगे। कोई कोई कहता है कि नहीं, शिरोदकशाय विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, कोई कहता है वामन के अवतार हैं, तो नहीं, हमको समझना होगा कि सारे अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये समझ में आ रहा है ना कि परिभाषा रूपे यहार सर्वत्र अधिकार, ठीक है। अब देख रहे हैं कितना गंभीर ये श्लोक है और कितना गंभीर शास्त्र है चैतन्य चरितामृत। श्री पूरे भागवत का सार आपको एकदम स्पष्ट रूप से मालूम चल रहा है। जितना कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवत को समझते हैं उतना हम नहीं समझते, तो इसलिए उनके अनुगत में हम सीखेंगे तो भागवत हम समझ पाएंगे। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्ण रविहार, ए अर्थ ना जाने मूर्ख अर्थ करे आर। ब्रह्म आत्मा और भगवान, यानी ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये कृष्ण के ही विहार हैं, कृष्ण के ही विस्तार हैं। ए अर्थ ना जाने मूर्ख अर्थ करे आर, ये समझ नहीं पाने के कारण मूर्ख लोग अलग अलग अर्थ करते हैं कि कृष्ण तो अभी आए, या यहां तक कह देते हैं कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आए, यह सब भी वो कह देते हैं। ये उनकी मूर्ता है और भगवान के प्रति अपराध है। ये तो बहुत आसान लग रहा होगा, समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। अब वो क्या कह रहे हैं, ये सिद्धांत नहीं बोले, कह रहे इन लोगों का सिद्धांत क्या है, अवतारी तो नारायण है, कृष्ण तो उनके अवतार है। देखो नारायण के चार भुजाएं हैं और कृष्ण की कम है, कृष्ण की दो भुजाएं हैं। अगर आपको याद हो भगवद गीता में श्रील बलदेव विद्याभूषण भी बहुत विनोद करते हैं, वो कहते हैं कि यदि भुजाएं ही निर्धारित करती हैं कि कोई भगवान है तो फिर कार्तिक वीर अर्जुन की तो 1000 भुजाएं थी। आप जानते हैं ना, जिसने रावण को दबा दिया था अपने उसमें कांख में दबा दिया था, तो उसकी तो 1000 भुजाएं थी, तो क्या वो भगवान हो गया? और कौन था, बाणासुर की भी 1000 भुजाएं थी। तो भुजाओं के द्वारा आप यह निर्णय नहीं कर सकते हो कि कौन भगवान है। ये लोग इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट देते हैं। और अभी बीच में प्रश्न भी आया था कि भाई पहले तो भगवान विष्णु देवकी के सामने आए और फिर वह कृष्ण के रूप में हुए, तो स्वाभाविक से बात है कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनका मत है। और आपने यह भी सुना होगा, सुना था कि पहला श्लोक इस अध्याय का क्या था, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो सिद्धांत का सागर है जिसमें विभिन्न प्रकार के मत कैसे हैं मगरमच्छ की तरह, उसको एक बच्चा भी पार कर जाएगा। तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है ना कि कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है, परम भगवान है, ये सब महाप्रभु की कृपा ही है। और ये कृपा महाप्रभु कैसे, आप तो कहो कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं, लेकिन आप जानते हो 90 साल में वो लिख रहे हैं, कहते हैं ना मुझे दिख रहा है ना मुझे ठीक से सुनाई पड़ता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये कितनी आश्चर्य की बात है। तो ये स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने ये ग्रंथ लिखवाया है। और आपको याद हो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य इस प्रस्तावना में लिखते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो जब पढ़ा रहे थे तो ये बात बताई गई थी, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, तो उनका हमें संग प्राप्त हो रहा है। तो ये उनकी कृपा से ही सारी बातें हमको पकी पकाई मिल रही है और ठीक प्रकार से। ए मत नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहार निर्जिते भागवत पद्य दक्ष। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मत पूर्व पक्षी मतलब अपोनेंट्स यानी कि विरोध पक्षी वाले लोग बोलते हैं, और उनको जीतने के लिए भागवत का एक भागवत पद्य दक्ष, भागवत का एक श्लोक बड़ा दक्ष है, वो श्लोक आपके सामने है, इस श्लोक को जानते हो आप लोग। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्ववादी हैं, तत्ववादी नहीं, जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि वो अद्वय ज्ञान है, यानी कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये अलग अलग वस्तु नहीं है, ये भगवान के ही विस्तार। तो एक ही श्लोक में उसको खंडित कर दिया गया। सुनो भाई एक श्लोक, सॉरी सुनो भाई ए श्लोक कर विचार, एक मुख्य तत्व तीन तहार प्रचार। सुनो भाई, अरे सुनो भाई, कितना विनोद में बोल रहे, कितना सुंदर शैली है। सुनो भाई ए श्लोक करह विचार, इस श्लोक पे विचार करो। एक मुख्य तत्व तीन तहार प्रचार, एक मुख्य तत्व है, कौन सा तत्व है, भगवान, और तीन तहार प्रचार, वह बाकी तीन जो है उनके विस्तार है।
अद्वै ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णे रसरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तहा रूप।
तो भगवान कृष्ण अद्वै ज्ञान तत्व हैं, इसको हमने समझाया था। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद नहीं होता, भगवान ही ज्ञाता है, भगवान ही ज्ञेय है, और भगवान ही ज्ञान है, परम ज्ञान है। तो वो वस्तु हैं, और इनसे ये तीनों है वस्तुएं अभिन्न है। ब्रह्म क्या है, अंग कांति, आत्मा मतलब परमात्मा कौन है, उनके अंश हैं, स्व अंश हैं, भिन्नांश नहीं। और भगवान तो आप जानते ही, नारायण के भी विस्तार हैं, ठीक है। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, तीन रूप में है भगवान।
ए श्लोकेर अर्थ है तुम्हें हैला निर्वचन, आर एक सुनो भागवते वचन।
इस श्लोक के अर्थ के द्वारा तुम निर्वचन हो गए, तुम एकदम चुप हो गए हो, अब तुम कुछ नहीं बोल सकते। और एक सुना भागवतेर वचन, और तुम भागवत का एक और वचन श्रवण करो।
एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे।
अब घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा आप लोग को सोच रहे होंगे कि ये तीसरा श्लोक, तीसरा अध्याय आपने बंद कर दिया प्रभु जी बीच में, नहीं फिर आ गया आपके सामने। ये तीसरे अध्याय का प्रथम स्कंद, तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वहां पे जब आप सुन रहे थे कि बहुत सारे अवतारों का वर्णन था कि भाई ये अवतार आए, ये अवतार, ये अवतार आए, तो प्रश्न बनेगा कि किसके अवतार हैं। तो कह रहे एते चांश कलह पुंस, एते च अंश कलह पुंस, ये जितने भी अवतार हैं या तो अंश हैं या कला हैं पुंस के। पुंस कौन, चिरोदकश विष्णु मान लीजिए, गर्भोदकश विष्णु मान लीजिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, क्योंकि जब सूत गोस्वामी वर्णन करेंगे, आप जब सुनेंगे उसमें आप पढ़ सकते हैं, तो कृष्ण और बलराम जी को भी अवतार के रूप में रख दिया गया था। तो उनको भय हुआ कि कहीं कोई व्यक्ति कृष्ण को अवतार के रूप में न ग्रहण करने लग जाए, ये अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति, क्योंकि वो अवतार ही हैं, वो अवतार नहीं है। अवतारी भी अवतरित होता है, लेकिन वह उनका स्रोत कोई और नहीं होता है। तो इसलिए वह सूत गोस्वामी जी ने श्लोक बोला, एते चांश कलह पुंस, ये जितने भी अवतार हैं ये शिरोदकशय विष्णु भगवान के, पुरुष अवतार के अंश हैं या कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं, भगवान बलराम जी हैं, भगवान जनार्दन, जो अन्य अन्य विष्णु स्वरूप हैं, वो सब भगवान हैं। लेकिन स्वयं भगवान का अर्थ है कि उनकी सत्ता अब और किसी और विष्णु तत्व पे आश्रित नहीं होती। कुछ बातें भक्तों को पता होंगी, और कुछ बातें मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं ताकि नए भक्तों को भी बात समझ में आ जाए। समझ रहे हैं, कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण, उनसे विस्तारित बलराम जी, फिर से चतुर्व्यूह यानी कि प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण और वासुदेव, तो उनका सबका विस्तार यानी हो रहा एक के बाद एक। लेकिन यह मत समझिएगा कि किसी समय हुआ है, वो शाश्वत हैं, लेकिन फिर भी वह भगवान कृष्ण की ऊपर आश्रित है। लेकिन भगवान कृष्ण की सत्ता किसी पे भी आश्रित नहीं है, तो इस बात को समझाने के लिए बोल रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर कह रहे हैं समान रूप से जो सभी अवतारों का प्रयोजन है, वो सब अवतार आते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र के अरि, इंद्र के शत्रुओं के द्वारा जब ये लोक व्याकुल हो जाता है, मृडयन्ति युगे युगे, तो ये बार बार हर युग में अवतरित होते हैं। कृष्ण हर युग में अवतरित नहीं होते हैं, ये जितने भी अवतार हैं वह अवतरित होते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, वह फ्लो बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी ने श्लोक बोला क्यों।
सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करी लगणन।
समझ में आ गया, बताऊं, बहुत इजी है। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, सभी अवतारों के समान लक्षण बताए, नारद जी का, चतुर कुमार का, मत्स्य अवतार का, इत्यादि। तार मध्य कृष्ण चंद्र करी गणन, तीसरे अध्याय में जब अवतारों का वर्णन हो रहा है, उनके सभी अवतारों का वर्णन हो रहा है, उसी के बीच में भगवान कृष्ण बलराम का भी वर्णन कर दिया। याद आ रहा है विष्णुशु एक शब्द आया था, वाला श्लोक था, उसमें बताया गया था कि भाई कृष्ण का भी अवतार का वर्णन हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं, पारायण कर रहे तो समझ में आ रहा था ना कि सारे अवतारों का वर्णन हो रहा है, उसमें कृष्ण बलराम जी का भी वर्णन हो गया। तबे सुत गोसाई मने पाई, सॉरी सॉरी, तबे सुत गोसाई मने पाई बड़ भय, यारा ये लक्षण ताहा करी ले निश्चय। तब सुत गोसाई ने अपने मन में बड़ा भय पाया, यारा ये लक्षण ताहा करी ले निश्चय, इसका अर्थ क्या है? 69, मैं गलत नहीं कहना चाहता, कहीं अगर कुछ है कठिनाई तो उसे देख लेना चाहिए। हाँ, जारा ये लक्षण तहा करी ले निश्चय, जिस जिस अवतार का जो भी स्वरूप और तटस्थ लक्षण था उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। जैसे कि जिन अवतारों के बारे में हम सुन चुके हैं उनको याद कर लें, हमने सुना था चार कुमारों के रूप में, उनकी उम्र कितनी थी? 5 साल मैक्सिमम। और वो क्या पहनते हैं? कुछ नहीं पहनते, ठीक है। और कुछ पढ़े लिखे हैं? माता जी जानवी माता जी कह रही नहीं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं माता जी, यही वैसी ने पूछा। अब 5 साल का बच्चा है, कपड़ा भी नहीं पहनता तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा। नहीं, उनको ज्ञान, वो ज्ञान शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है, सबसे बड़े ज्ञानी है, ठीक है। और उन्हें क्या तपस्या करी? अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन तो कोई भी कर, ब्रह्मचर्य का पालन तो कोई भी करते हैं, बहुत करते हैं, कहते नहीं ब्रह्मचर्यम अखंडितम, कभी ब्रह्मचर्य उनका खंडित नहीं हुआ। और कौन से अवतार के बारे में सुना? नारद जी और वराहदेव, और था कोई? 3 तक ही गए थे हम लोग, ठीक है। तो वहां पे आपने स्वरूप और तटस्थ लक्षणों के बारे में सुना था। स्वरूप लक्षण मतलब आकृति और प्रकृति, जैसे मैंने पूछा चार कुमार, आपको समझ में आ गया ना? चार कुमार 5 साल के, कपड़ा नहीं पहनते, और तटस्थ लक्षण क्या था? ब्रह्मचर्य किया, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया, भगवान के लिए तपस्या करी। इसी प्रकार से नारद जी का भी, नारद जी ने क्या कार्य किया था? यस, प्रचार तो किया था, पांचरात्रिक, नारद पांचरात्र की कवि को लिखा था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से सभी अवतारों का या जितने भी अवतारों का वर्णन वहां पे हुआ, उनके स्वरूप और तटस्थ लक्षणों का वर्णन हुआ। स्वरूप लक्षण समझते हैं शिवम प्रभु, स्वरूप मतलब आकृति, मृदंग है, इसकी आकृति मृदंग जैसी लग रही है, और ये मट्टी का बना हुआ है, ये पता नहीं है आपको? मैं मिट्टी का बना होता है, तो इसकी आकृति और प्रकृति है। ये माउस है, इसकी आकृति अलग लग रही है कि नहीं? ये प्लास्टिक से बना हुआ है। मैं माइक हूं, मैं माइक दिख रहा हूं? नहीं दिख रहा ना। मैं स्पीकर हूं, डिपेंडिंग स्पीकर का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, JBL का स्पीकर या कथा का स्पीकर? तो आप समझ रहे ना, किसी वस्तु को आप आकृति से पहचानते हैं कि नहीं, और फिर उसकी प्रकृति होती है, और फिर कुछ कार्य कर रहे होते हैं। जैसे मैं घुमा, कई बार उदाहरण दिया है, मान लीजिए गोमाता में बैठा हूँ, वहाँ के मैनेजर भी हैं, तो कहा हाँ भाई ये सामान गोमाता के बेचते हैं, तो वह तो नहीं जान रहे कि मैं चतन चट्टा में तो कुछ बोल सकता हूँ, और यहाँ बैठा हूँ तो ये भी कुछ कह नहीं सकता कि मैं गोमाता में मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति जब कोई कार्य करता है उसके अनुसार उसको तटस्थ लक्षण कहा जाता है। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? तो बहुत इजी बात है, किसी भी वस्तु के, भाई ये माउस है, तो माउस मतलब अच्छा ये माउस है, दूर रखो उसको, कहीं गेहूं खा जाएगा। ये वाला माउस गेहूं खाता है? आप बोल रहे हैं माउस, लेकिन ये गेहूं नहीं खाता है, ये से आप कर्सर को घुमाते हो अपने लैपटॉप पे, समझ रहे ना मेरी बात? एप्पल जो है, जो लैपटॉप होता है, उसे खाया नहीं जाता है, उसका स्वरूप और उसका तटस्थ लक्षण अलग होते हैं। तो ये सब बातों से अवतारों को समझा जाता है। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सभी अवतारों का जो भी वर्णन हुआ, तटस्थ और स्वरूप लक्षणों का वर्णन हुआ। तो अब उसी संबंध में आगे कह रहे हैं, अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश। जितने भी अवतार हैं, अवतार सब पुरुषेर कला अंश, पुरुष अवतारों के कला या उनके अंश हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस, लेकिन भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, ये बात बोल रहे हैं। और ये बात स्थापित नहीं किए 28वें श्लोक से पहले, जो आपने सुना ना, एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये श्लोक बोलने से पहले तक ये बात स्थापित नहीं हो रही थी कि कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं है। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ में आ रहा कि क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए आदत ही बन गई है कि भाई कुछ कहानी सुनाई जाए, कुछ किस्सा सुनाया जाए, उसके बाद खत्म कर दिया जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं फिर। तो अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं भागवतम तो कुछ भी कठिनाई नहीं होगी समझने में। नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या बताऊं, क्या समझ में नहीं आ रहा जरा बता सकते। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो भाई भागवत थोड़ा पढ़ते हैं वो तो मैं ये देखिए क्लास का बहुत प्रयोजन होते हैं। भले आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर 4-5 साल आप जप करते रहे और भागवतम पढ़ते रहेंगे तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब तो कभी ना कभी तो बोली जानी चाहिए ना। मैंने देखा परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी षड उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकों पर इतना हाई लेक्चर दे रहे हैं। महाराज को शरीर छोड़े कितने समय हो गया, ऑलमोस्ट 6 साल 5 साल मुझे याद नहीं है, 2015 6 साल उसके पहले दिए होंगे, और इतना गंभीर है, इतना हाई लेक्चर है। मैं सोच रहा था कि लोग समझ कैसे रहे होंगे वहां पे। हाँ हाँ पुणे में दिए थे तो दिए तो अब आज मुझे तो समझ में आ रहा है ना, कभी तो समझ में आएगा ना। बार बार आकर हम इंसान जानवर का भेद तो नहीं बता सकते। अब जिसको समझ में आ रहा है वो ग्रहण कर ले, क्या कह सकते हैं। कहने के बाद उनको भय ये हो रहा था कि भगवान कृष्ण के को हमने ये नहीं समझा पाए कि वो अवतारी हैं, तो कहीं उनको अन्य अवतारों के संग समेट न लिया जाए, ये बोल रहे हैं। तो यह बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण सर्व अवतंश सारे अवतारों के स्रोत हैं। पूर्व पक्ष कहे तुमार भालत व्याख्यान पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। पूर्व पक्ष जो पूर्व पक्ष वाला व्यक्ति वो कह रहा है तुमने अच्छी बात बोली, अच्छा व्याख्यान किया, तो यही तो कहना चाहते हो ना कि पर व्योम के नारायण जो है वही स्वयं भगवान है, यही कहना चाहते हो ना। इस प्रकार से शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी कहेगा, पूर्व पक्षी का मतलब विपक्ष का व्यक्ति कहेगा, यही तो कह रहे हो ना कि स्वयं भगवान नारायण है। तेह आसी कृष्ण रूपे करे न अवतार, ए अर्थ श्लोके देखी किया विचार। भाई तेह आसी वही नारायण भगवान स्वयं भगवान है और वही कृष्ण के रूप में अवतार ले रहे हैं, इस श्लोक के अर्थ में और तो कोई विचार है नहीं। ये कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी जो विपक्षी है वो इस प्रकार से बोल रहा है। तारे कहे के न कर कुतर कानुमान शास्त्र विरुद्धार्थ कबु न हय प्रमाण। तारे कहे मैं उनको कह रहा हूं आप ये कुतर्क अनुमान क्यों कर रहे हैं, केना करो क्यों कर रहे हैं, केना मीन्स क्यों, क्यों कर रहे हैं इस प्रकार का कुतर्क, शास्त्र के विरुद्ध अर्थ को कभी न हय प्रमाण, उसको प्रमाण कभी नहीं माना जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपका मत शिवम प्रभु और मेरे मत की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को ऐसे बोलते हैं तो बड़ा खराब लगता है, और प्राय लोगों को प्रचार करो तो कहेंगे हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं। प्रभुपाद जी से भी एक व्यक्ति बोल रहा था बार बार, एज फार एज आई नो। प्रभुपाद ने बोले दैट इज द पॉइंट, हाउ फार डू यू नो, जितना मैं जानता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा यही तो बात है, तुम कितना जानते हो, हम जानते बहुत थोड़ा सा है, और व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत जानते हैं। अपनी पलकों को देखें आप में से कोई व्यक्ति, फिर तो नहीं होगी पलकें आपकी, पलकों को ही नहीं देख पाए हैं। ये नाक के आगे वाले भाग को देख पाए हैं तो नहीं है ना, फिर नाक हमारी, कभी कभी बोलते भी हमारी नाक काट दी आपने, अरे नाक देखी नहीं आपने, अपनी कटेगी कैसे नाक। आप तो शीश पर विश्वास करते हैं ना, खुद तो नहीं देखा ना आपने, कभी यही बात बोलते हैं ना कि तुमने भगवान को खुद देखा है क्या, तो बोलो खुद तुमने अपनी नाक को देखा है क्या, कभी सोचा आपने इस तरह से, हमने कभी प्रयास कीजिए, नहीं हम लोग देख ही नहीं सकेंगे, प्रयास कर सकते हैं, अपनी नाक ही नहीं देख पा रहे हैं, अपनी आंख ही नहीं देख पा रहे हैं, तो दूसरे पर आश्रित होकर कुछ समझ पा रहे हैं ना कि हम कितने सुंदर लगते हैं जो कुछ भी मानते। सोचा कभी आपने इस तरह से, श्रीनिवास प्रभु अपनी नाक देखी कभी आपने, आईना दिखा रहा है ना, आप आईना पे क्यों विश्वास कर रहे हैं, अपने पे विश्वास कीजिए, बोलते हैं ना लोग कि भगवान, अब तुम भगवान की तुम शास्त्र की बात क्यों मानते हो, शास्त्र तो आईना है ही है, शास्त्र तो दिखाई रहा है कि ये स्थिति है, शास्त्र की बात क्यों मानते हो, खुद की बात, खुद पे अपना विश्वास रखो। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी नाक भी नहीं देख सकते। तो खैर बात यह है कि शास्त्र के विरुद्ध कोई अर्थ है तो उसको कभी कोई प्रमाण नहीं मानना जाए। कई कई बार भक्त लोग भी ऐसी बातें बोल देते हैं जो ठीक से नहीं सुने रहते हैं। महाराज बता रहे थे संबंध में, जुहू मंदिर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, नया होगा, और भक्त लोग हरे कृष्ण जप रहे थे, तो नहीं बोल रहा होगा, वो सुन रहा था। तो टेम्पल कमांडर जो भी कोई आया उसने कहा बोलो बोलो नहीं तो नरक में जाओगे। अब उसे पूछ लो कि क्या शास्त्र प्रमाण है ऐसा, महाराज बोल रहे थे ऐसा, घूमते हैं प्रचारक, ऐसा नहीं है कि तुम हरे कृष्ण नहीं बोलोगे तो नरक में जाओगे, कथम अपि, कान से हरे कृष्ण सुन रहा है तो भी वो शुद्ध हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मंगल आरती में भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, बाहर के लोग चाहे सेल्फी भी देख कर रहे हो या फोन में भी व्यस्त हो, उनके कान से स्पर्श हो रहा है हरिनाम। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, एक तात्पर्य में बता रहे हैं कि दे मे बी इवन अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, कहां है वो, लेकिन जो संकीर्तन आंदोलन हो रहा है उसे कान में जो जा रहा है उससे वह परिवर्तित होगा ही, वो शुद्ध होगा ही। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी सोचे अच्छा अच्छा बोलना नहीं है अब तो ठीक है, हम रिकॉर्डिंग लगा देंगे प्रभुपाद जी की और बस सुनेंगे। अरे भाई जीभ से भी आनंद लेना चाहिए, ये भी शास्त्र कह रहा है ना। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं कहनी चाहिए, और अगर हमसे मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है तो फिर शास्त्र को देख लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए हमसे त्रुटि हो गई, उसको ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब जो बता रहे हैं, जो डिस्कशन आपके सामने है वह थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। अच्छा आप तो क्या, मुझे लग रहा था आप कहेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं थोड़ा और टफ हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे तब समझ में आएगा। अनुवादम अनुक्त्वा तु न विधेयम् उदीरयेत् नहि अवलब्धास्पदम् किंचित् कुत्रचित् प्रतिष्ठति। अभी क्या कह रहे हैं, अनुवादम अनुक्त्वा तु, अनुवाद को न कह करके, न विधेयम् उदीरयेत्, विधेय को कभी नहीं कहना चाहिए। ये एक रूल बता रहे हैं ग्रामर का, नहि अलब्धास्पदम् किंचित् कुत्रचित प्रतिष्ठति, क्योंकि वह अपने समुचित आधार के बिना नहीं खड़ा हो सकता है। जैसे ये टेबल और चेयर धरती पे खड़ी है, आधार है उसका, तो धरती ही गायब कर देंगे तो फिर उसका कोई आधार नहीं रहेगा। तो कहने अनुवाद को कहे बिना व्यक्ति को विधेय नहीं कहना चाहिए। अभी ये क्यों कह रहे हैं, अभी आगे की जो हम बातें बोलेंगे उसे समझ में आएगा कि अनुवाद क्या होता है और विधेय क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जानते हैं आप लोग, कोई पढ़ा है अंग्रेजी ग्रामर? अच्छा, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, विधेय का अर्थ क्या होता है माता जी? प्रेडिकेट का मतलब, अरे आप तो फंसा दे रहे हैं। प्रेडिकेट मत, जैसे कहा जाए कि ये मृदंग अच्छा है, बहुत सुंदर मृदंग हो गया अनुवाद, और अच्छा है ये हो गया उसका विधेय, डिस्क्रिप्शन। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया उसका डिस्क्रिप्शन। अच्छा है तो आपको समझ नहीं पाएंगे ना कौन अच्छा है, आम अच्छा है कि कथा अच्छी है या स्पीकर अच्छा है, नहीं समझ में आएगा ना। तो आप कहेंगे भाई कौन अच्छा है, नहीं समझोगे तो आज छोड़ने वाला नहीं हो ये। अभी हम कोई शास्त्र नहीं बोल रहे हैं, ग्राम इसका मतलब अंग्रेजी भी नहीं पढ़े ठीक से और हिंदी ग्रामर में भी नंबर कम आए। अच्छा कितने नंबर आए थे शिवम प्रभु हिंदी ग्रामर में चौथी क्लास में? याद नहीं, शायद पिटाई भी खाए होंगे। अरे नंबर कमाए हिंदी में 74 लेके आया 80 आने चाहिए थे। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छे हैं। अब मन में क्या प्रश्न आएगा, कौन अच्छे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो ये हो गया अनुवाद का मतलब, हो गया सब्जेक्ट सिंपल, और प्रेडिकेट मतलब डिस्क्रिप्शन। तो क्या हम डिस्क्रिप्शन बिना सब्जेक्ट के दे सकते हैं? चोर है, कौन चोर है? तो पहले ये बताओ कौन है, किसकी बात कर रहे हो, क्या है? हम सामान्य भाषा में ऐसा करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। यही बात श्लोक में कह रहे हैं कि बिना अनुवाद को रखे आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, चर्चा नहीं कर सकते। मान लीजिए कर्णमत प्रभु आए हमारे पास सुबह, हमने कहा बहुत अच्छा बना है, तो स्वाभाविक सी बात है आप पूछेंगे क्या अच्छा बना है, खिचड़ी अच्छी बनी है कि चावल अच्छा बना है कि दाल अच्छा बना है, दाल अच्छी बनी है मतलब। तो हर जगह हम लोग पहले सब्जेक्ट बोलते हैं कि नहीं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? मुझे पता है कि इस प्रकार की क्लास के व्यूवर्स बहुत कम होंगे, लेकिन जीरो भी नहीं होंगे। और ये मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज आप सुन रहे हैं, एक बार आप दोबारा उसको पढ़े, अगर इसी जीवन में पढ़े तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा सब बातें क्यों बोलने, पूरा फ्लो समझ में आएगा। अच्छा,
अनुवाद न कही अना कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय।
यदि आप अनुवाद नहीं कह रहे हैं तो आप विधेय नहीं कह सकते हैं, विधेय समझ में आ रहा है, प्रेडिकेट नहीं कह सकते। आगे अनुवाद कही, पहले आप अनुवाद कहिए उसके बाद आप विधेय कहिए। विधेय समझ में आ रहा है, प्रेडिकेट डिस्क्रिप्शन, ऐसे ऐसे संदेश देख रहे हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा। संजीव प्रभु समझ में आ रहा है, परेशान है, कौन परेशान है, एक मिनट, घर से परेशान है, कौन परेशान है, तो आप बताएंगे घर से कौन परेशान है, संजीव प्रभु। खुश है, कौन खुश है, संजीव प्रभु। एग्जाम्पल ले रहा, घर से आप परेशान नहीं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मान लो कोई सर संजीव नाम नहीं, क्या नाम है आपका, अच्छा आपका आपका नाम भी संजीव है ना, नहीं राजीव, राजीव, राजीव प्रभु। अगर मैं ऐसे बोलूं साउथ इंडियन है, कौन साउथ इंडियन है, आपने कैसे बोले राजीव, आप नहीं साउथ इंडियन है, करुणामित प्रभु भी साउथ इंडियन हो सकते हैं, हमारे विपिन प्रभु आर यू साउथ इंडियन या ऑलमोस्ट, अमरनाथ भी हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कौन से साउथ इंडियन की बात कर रहे हो भाई, अरे वो मोटे से प्रभु जी जो है, वो मोटे से प्रभु जी कौन है, अरे आप, मैं भी मोटा हूं, पार्थी मोटा है, परशुराम भी ऑलमोस्ट मोटा है, बहुत लोग मोटे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि भाई बताना पड़ेगा ना सब्जेक्ट क्या है, ये बात बोल रहे विधेय कही ये तार ये वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे ये है ज्ञात। 76, किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को ज्ञात होता है, लेकिन जबकि उद्देश्य यानी कर्ता वह है जो उसे ज्ञात रहता है। शुभ कृष्णदास फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझ में आ गया है, वो क्या है, वो चालक के मैनेजर हैं, ये बात नहीं पता होती है। समझ में आई, मैं अगर कहूं राजीव तो राजीव तो समझ में आ रहा है, अब राजीव प्रभु के आगे क्या बात बोलेंगे आप, गोशाला में सेवा करते हैं, गोमाता में सेवा करते हैं, तो गोमाता में सेवा करते हैं ये बात अज्ञात है और राजीव प्रभु ज्ञात हैं। नहीं समझ में आ रहा है, शिवम ये बात समझ में आई, आप हो गए सब्जेक्ट। अब मैं पूछूं ये क्या करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा था ना सुबह, आप कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं, तो ये सब बातें अज्ञात हैं कि नहीं, उसको विधेय कहते हैं। हे भगवान, ये ग्रामर की क्लास भी शुरू हो गई यहां पे, लेकिन शास्त्र को ऐसे ही समझना होगा, कोई कठिनाई नहीं, अब तो मैं समझता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण क्या है, यछे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। जैसे कहे ए विप्र परम पंडित, ये विप्र ये ब्राह्मण परम पंडित है, तो ये ब्राह्मण, तो ये तो ज्ञात हो गया आपको, ये हो गया उसका अनुवाद यानी सब्जेक्ट, और ये परम पंडित है उसका पांडित्य उसका विधेय हो गया। अब तो बहुत आसान होगा, अब तो इतना नहीं पढ़े तो उसका मतलब यानी कि दसवीं में पास नहीं हुए हो, और पास हुए तो फिर क्या क्या चीटिंग करके पास हुए, कोई आठवीं तक तो सब लोग पढ़े हैं ना, आठवीं तक तो पढ़े हो ना, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात, अतेव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। बड़ा स्पष्ट है, उनका विप्रत्व होना, उनका ब्राह्मण होना ही जान रहे हो, लेकिन उनका पांडित्य अज्ञात है, भाई पंडित है कि नहीं ये नहीं पता, ब्राह्मण तो है लेकिन पंडित है नहीं पता है, तो इसलिए विप्र पहले बोलना पड़ा और उसके बाद पांडित्य को बोलना पड़ा, ठीक है। यानी कि प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये बात कह रहे हैं। तैचे इहा अवतार सबो हैला ज्ञात, कार अवतार ए वस्तु अविज्ञात। इसी प्रकार से तैचे इहा अवतार, तैचे इसी प्रकार से इहा अवतार, ये सब अवतार, ये सब ज्ञात था कि अवतार हुए हैं, ये अवतार हुए, वो अवतार हुए, वह अवतार, ये बात ज्ञात थी, यानी कि ज्ञात है अर्थात कि अनुवाद हो गया, एते चांस कलापम समय एते एते शब्द हो गया अनुवाद। कार अवतार किसके अवतार है ये बात नहीं समझ में आ रही थी, तो किसके अवतार वाला जो भाग हो गया एते चांस कला पुंस एते एते मतलब ये सारे अवतार हो गए ज्ञात वस्तु, ये सारे अवतार नारद जी ब्रह्मा नारद जी चार कुमार इत्यादि जो कुछ भी हैं ये हो गए सारे एक समूह को ले लीजिए तो एते शब्द से ही हो गया ये सारे अवतार, ये हो गए अनुवाद सब्जेक्ट। लेकिन किसके अवतार हैं ये बात समझ में नहीं आई, तो ये हो गया विधेय विधेय कृष्णस्तु भगवान स्वयं नहीं। एते चांस कला पुंस चा अंश कला पुंस ये हो गया विधेय। आज आप लोग बुरे फंस गए ना ग्रामर की क्लास भागवत की क्लास चैतन्य चरता में इतना कठिन, चलो वही तकिया लगाया जाए कुछ चाय वाय पिया जाए है कि नहीं बड़ा कठिन बड़ा कठिन हो रहा है ग्रहण कर पा रहे श्लोक। अब बताइए जिंदगी में बताइए क्या हम एते चांस कला पोमसा को ऐसे देखते, किस प्रकार से सुंदर विचार उन्होंने किया है। और आप बताइए क्या यहाँ युक्ति नहीं लग रही है, युक्ति है लेकिन शास्त्र के आधार की युक्ति है, तो बड़ा अच्छा लगता है एटलीस्ट मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए एते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद, समझ में आ गया एते शब्द यह अनुवाद है, एते जितने भी सारे अवतार हैं ये समझ में आ रहा है ये अवतार हैं, किसके अवतार हैं ये बात नहीं समझ में आ रही। जैसे आपके तीन बच्चे हैं ना, तीन है चार तीन है, मान लो तीन बच्चे यहां बैठे हो तो मैं कहीं एते से सारे बच्चे हैं तो प्रश्न होगा किसके बच्चे हैं, तो ये बात तो नहीं पता चल रही ना, तो बोले कि हाँ भाई ये राजकुमार और पूनम माता जी के बच्चे हैं, राजकुमार प्रभु और पूनम माता जी के बच्चे हैं, तो ये बात अब विधेय हो गया कि नहीं, ये बात प्रेडिकेट हो गया कि नहीं। हाँ हम प्रभु जी हम आपको उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं कि हमें समझ में आ गया है, क्या ये बात नहीं समझ में आ रही है आपको, इज इट नॉट। अगर मान लीजिए सारी वस्तुएं रखी रहे कहें कि हारमोनियम कहाँ है लैपटॉप किस ये सब है एते सब कुछ है तो प्रश्न बनेगा ना किसके हैं, ये तो आप नहीं जान रहे हो, तो जो नहीं जान रहे वो बाद में कहा जाएगा ना, ये बात बोल रहे हैं। तय छे कृष्ण अवतार भीतरे भीतरे है लग्या तहारा विशेष ज्ञान से अविज्ञात। उसी प्रकार से ये तो बात समझ में आए कि कृष्ण अवतार हैं लेकिन उनके बारे में जो विशेष ज्ञान है वह नहीं समझ में आया। अतेव कृष्ण शब्दे आगे अनुवाद स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। देखिए श्लोक श्लोक मन में आ गया एते चांस कला पुंसा, तो इसमें अनुवाद क्या है एते और विधेय क्या है चांस कला पुंसा। ठीक अब अगली लाइन में आइए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण के बारे में क्या ज्ञात है आपको। रुकिए रुकिए अभी तक कृष्ण के बारे में यह ज्ञात है कि कृष्ण बलराम जी विष्णु के वंश में अवतार के रूप में अवतरित हुए, यह बात पता थी आपको। तो कृष्ण जो नेक्स्ट लाइन शब्द है नेक्स्ट लाइन है इसमें कृष्ण जो है वह अनुवाद है, अनुवाद का अर्थ यहां पर है सब्जेक्ट स्वयं तू भगवान स्वयं ये हो गया विधेय। अब ग्रहण कर रहे हैं यह बात नहीं पता है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इसलिए कह रहे हैं स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। तो देख लीजिए भागवत श्लोक कितना गंभीर है और हम क्या स्थापित करना चाहते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, यह श्लोक से हम सीख रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, वही कृष्ण है, तो फिर वह स्थापित होगा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतार ही है अवतार नहीं है। हे प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु इन बच्चों को बुद्धि दे कि आपकी बात समझ सके, ये विधेय और संवाद की बात समझ में आ रही है। मुझे लगता है इतनी ग्रामर तो सब लोग समझ गए होंगे, नहीं भी समझी हो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। यहाँ पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं में विधेय क्या है, भगवान स्वयं, और अनुवाद क्या है, अनुवाद क्या है, विधेय क्या है। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इह हैला साध स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैला बाध्य। जरा देखें इसका अर्थ क्या है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ इसलिए कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इह हैला साध्य, यह सिद्ध हो गया कि कृष्ण की स्वयं भगवत्ता मतलब स्वयं भगवान होने का गुण, यह इस बात से सिद्ध हो गया। ठीक है, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैला बाध्य, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा इस श्लोक के आधार पर। कृष्ण यदि अंश हैते अंशी नारायण तबे विपरीत हैते सुतेर वचन। कृष्ण यदि अंश होते और उनके स्रोत या अंशी होते नारायण, तब सूत गोस्वामी के वचन विपरीत होते, कुछ अलग होते। क्या कहते? नारायण अंशी जय स्वयं भगवान तेह श्री कृष्ण ऐछे करिते करित व्याख्यान। तो ऐसे व्याख्यान करते कि अंशी है नारायण जो स्वयं भगवान है और उनके अंश है श्री कृष्ण, लेकिन ऐसा व्याख्यान सूत गोस्वामी जी नहीं किए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहें। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाट आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष ए सब। अब एक अच्छी बात आ रही है, कह रहे हैं प्रामाणिक ऋषियों में जैसे सूत गोस्वामी इत्यादि में आर्ष विज्ञ मतलब जो पुरातन काल के ऋषि मुनि हैं उनके वाक्य में ये सब दोष नहीं होते। कौन से दोष नहीं होते हैं? भ्रम मतलब इल्यूजन, प्रमाद मतलब पागलपन, भ्रम मतलब गलती, प्रमाद मतलब भ्रम, विप्रलिप्सा मतलब धोखेबाजी, और कर्णपाटम मतलब अपूर्ण इंद्रियां। इसकी व्याख्या मैं बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में बता देते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां सब कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे अभी आपने देखा हम अपनी नाक को ही नहीं देख पाते, हम अपनी आंखों को ही नहीं देख पाते हैं, तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं। अगर आप क्या एग्जाम्पल देते हैं भक्त लोग, नींबू के बाद चीनी खाइए तो चीनी अजीब सी लगेगी, मीठी नहीं लगेगी। ये तो अनुभव होगा कि हलवा मीठा होता है, उसके बाद अगर आप खीर खाते हैं तो कहते हैं आज खीर में चीनी कम है, ग्रहण कर रहे हैं। जाड़े में वही जल आपको ठंडा लगता है और वही जल आपको हैंडपम्प का जल होता है ना, हैंडपम्प का जल आपको जाड़े में गर्म लगता है और गर्मी में बड़ा ठंडा लगता है, उसका टेम्परेचर वही रहता है। तो हमारी स्किन जो त्वचा है वह भी अपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बाहर से कोई आवाज़ जा रही है आपको लगा रही किसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं प्रमादवश, और जब गलतियां करते हैं तो फिर उसको छुपाने के लिए धोखेबाजी करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूत गोस्वामी जी मुक्त पुरुष हैं, पानी दे सकते हैं, तो उनमें उनके वाक्यों में कोई दोष ऐसा नहीं होता है। उनको अपनी भागवतम को रिविजन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? तो एक एक शब्द श्रीमद् भागवतम का पूर्ण है। तो मैं इसलिए इस बात में कहना चाहता हूं कि कोई कहेगा अरे चैतन्य चरितामृत यह तो नया ग्रंथ है, ये आर्ष ग्रंथ नहीं है, लेकिन समझना हो कि जो ग्रंथ आर्ष ग्रंथों पर आधारित होते हैं वह भी इन सब बातों से युक्त नहीं होते। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव ये सब उसमें नहीं होता है, और उसका हर वचन बिल्कुल सही होता है, समझ रहे हैं? ये भी श्रीला कृष्णदास गवराज गोस्वामी जो हैं ये स्वयं सेल्फ आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, और ये शास्त्रों को परंपरा में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी होगी। विरुद्धार्थत कह तुम्हें कहिते कर रोष तुम्हार अर्थ अविमृष्ट विधेयांश दोष। तुम विरुद्ध अर्थ कहते हो और जब मैं उसे ठीक करता हूं तो तुम गुस्सा होते हो। विरुद्धार्थ कहे तुम्हें कहिते कर रोष, तुम शास्त्रों के विरुद्ध बात बोल रहे हो और जब बताई जाती तो तुम गुस्सा कर रहे हो। तुम्हार अर्थ अविमृष्ट विधेयांश दोष, तुम्हारे अर्थ में विधेय जो है वो पहले रखा जा रहा है और अनुवाद बाद में रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा दोष है। तो देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी नम्र हैं, आप सुन चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो मल से भी निकृष्ट हूं, मल में रहने वाले कीड़े से भी निकृष्ट हूं, लेकिन जब सिद्धांत की बात आ रही तो एकदम बोल्ड है। ये नम्रता का अर्थ ये नहीं कि कोई कुछ भी कह दे भगवान के बारे में हम स्वीकार कर लें, ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता। यार भगवता हैते अन्य भगवता स्वयं भगवान शब्देर तहाते सत्य। जिनकी सत्ता से जिनकी भगवत्ता से अन्यों की भगवत्ता है वह स्वयं भगवान शब्द का अर्थ है। स्वयं भगवान शब्देर तहाते सत्ता, ऐसी उनकी सत्ता है, मतलब जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उनके आधार कौन है? भगवान कृष्ण, ये बातों कह रहे हैं। अब इसको उदाहरण से समझा रहे हैं। दीप है ते ये बहु दीपे रज्वलन, मूल एक दीप ताहा करिये गणन। जिस प्रकार से एक दीप बहुत सारे दीपकों को जलाता है, फिर भी मूल रूप से एक दीपक है कि नहीं। इसी को मुझे लग रहा था कि ब्रह्म संहिता से कोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोट नहीं किए हैं, लेकिन ये ब्रह्म संहिता का वचन है। दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते हि विवृत हेतु समान धर्मा। विष्णु चतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि निर्मा। यस्ताद्रिगेव च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
तो वहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे एक दीपक से बहुत सारे दीपक को जलाते हैं, तो अन्य दीपक भी उतनी ही शक्ति से जलते हैं जितना कि मूल दीपक। समान धर्मा शब्द आया, उसी प्रकार से सारे विष्णु तत्व भगवान के ही समान शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी एक मूल दीपक रहता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले भगवान थे फिर कोई नहीं था तो उन्हें कहा मेरे भैया होने चाहिए तो बलराम जी आ गए। ऐसा आप कृपया मत सोचिएगा कि बलराम जी कभी आए। बलराम जी भी शाश्वत हैं, भगवान कृष्ण भी शाश्वत हैं, लेकिन फिर भी इन सब की सत्ता भगवान कृष्ण पे आश्रित है। इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, शास्त्र वचन से सुनना पड़ेगा।
तैचे सब अवतारे कृष्ण से कारण और एक श्लोक शून कु व्याख्या खंडन।
इसी प्रकार से सभी अवतार के कारण कृष्ण ही हैं, और एक श्लोक सुनो जिससे तुम्हारी कु व्याख्या खंडित हो जाती है। आगे जाकर कृष्ण कविराज गोस्वामी कहेंगे भी आपको ये चेतन चरितामृत नहीं सुनना है तो आप बिल्कुल मत सुनिए। लेकिन आप अगर सुन रहे हैं तो कृपया श्रद्धा से सुनिए। अगर आप उसमें बहुत दोष निकाल रहे हैं तो मेरा वचन मेरा प्रार्थना है कि आप मत सुनिए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कहेंगे इतनी संस्कृत क्यों है, ये है वो है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ना, ये मेरी निंदा नहीं है, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु की निंदा है। आप आगे सुनेंगे उसको उस प्रकार से। अब यहाँ पे वह भागवत का ही श्लोक बोल रहे हैं।
अत्र सर्गो विसर्गश्चास्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन सांजसा।
वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक है, 10 टॉप टॉपिक है। अत्र सर्ग, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतारा, ईशानुकथा, निरोध, मुक्तिर और आश्रय, 10 हो गए। और दशमस्य विशुद्ध अर्थम, जो आश्रय तत्व है भगवान कृष्ण, उनके विशुद्ध अर्थ के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए नवानाम इह लक्षणम, इन 9 अन्य विषयों की चर्चा कर रहे हैं। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा, ताकि आसानी से, आंजसा मतलब आसानी से दशमा जो मूल तत्व है आश्रय तत्व भगवान कृष्ण में समझ में आए। इसीलिए श्रील व्यासदेव जी ने प्रथम 9 स्कंदों में इन तत्वों का वर्णन किया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आश्रय तत्व का वर्णन 9 स्कंदों में नहीं हुआ है, वहां पे भी हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से आश्रय तत्व का वर्णन दशम स्कंद में हुआ। अगर आपको स्मरण हो तो मैं जब भागवतम शुरू कर रहा था तो ये सब बातें हमने बताई गई थी। तो यही बोल रहे हैं कि यह श्लोक दिखा रहा है कि भगवान कृष्ण सभी विष्णु तत्वों के आश्रय हैं, और अन्यों की कथा इसलिए बताई जा रही है ताकि भगवान की बात, भगवान कृष्ण के संबंध में जो बात है वह ठीक से समझ में आए। यह श्लोक का अर्थ है।
आश्रय जानीते कही एना व पदार्थ एना वेर उत्पत्ति हेतु से ही आश्रय अर्थ।
जरा इसका अर्थ देख लेता हूं मैं। प्रभुपाद जी इसमें पूरा बताए हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण का अर्थ क्या है, उसको आप लोगों को पढ़ते हुए देख लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आश्रय जानीते कही ए नव पदार्थ, ये जो 9 पदार्थ हैं सर्ग विसर्ग इत्यादि, उन सब के जो आश्रय हैं, आश्रय जानीते कही ए नव पदार्थ, इन 9 पदार्थों के आश्रय जो हैं, हाँ उनका, उनको स्पष्ट करने के लिए मैंने
व्याख्यान किया है, माने कि जो इन नौ वस्तुओं के सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि के आश्रय हैं उनको समझाने के लिए मैंने नौ तत्वों का वर्णन किया है भागवत में। ए नवेर नवेर उत्पत्ति हेतु से आश्रय अर्थ, यानी कि जो इन नवों वस्तुओं के की उत्पत्ति के कारण है, सर्ग के, सर्ग मतलब जगत की सृष्टि, विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि इत्यादि जो सब कुछ में है उसके जो आश्रय है, जिसके उत्पत्ति के कारण है वो आश्रय है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीर सर्व विश्वेर विश्राम। कृष्ण सभी के आश्रय है, कृष्ण सभी के आश्रय हैं, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण सभी के आश्रय एवं धाम हैं, या धाम मतलब जहां व्यक्ति स्थान प्राप्त करता है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर ही आश्रित हैं। अब कहेंगे कृष्ण के शरीर पर आश्रित हैं, हमने तो सुना कि महाविष्णु पर आश्रित हैं, तो महाविष्णु भी कृष्ण के ही अंश हैं, ठीक है। दशमे दशम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। ये श्रीधर श्रीधर स्वामी की टीका से है, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के में ही बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम का दसवां स्कंद दसवें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं, वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत या उद्गम हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ही आश्रय तत्व हैं, उनके ऊपर सारे विष्णु तत्व भी आश्रित रहते हैं, ये बात वो कह रहे हैं, इस प्रकार से वह बता रहे। थक गए आप लोग? ठीक है, आज तो हम सोच रहे हैं इसको पूरा करके ही कर देते हैं, तो फिर अगले तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। कृष्णेर स्वरूप और शक्ति त्रय ज्ञान जारहि तहां नहीं कृष्णेत अज्ञान। कृष्ण के स्वरूप और उनकी तीन शक्तियों के बारे में जिसको ज्ञान होता है, जिसके पास होता है, उसको कृष्ण के संबंध में कोई अज्ञान नहीं रह जाता, ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो देखिए हर एक की रुचि हो सकती है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे, लेकिन भक्त बोल रहे थे हमें ये प्रवचन वगैरह सुनने में इतना भी नहीं है हमारा मन, हमारा कीर्तन से हम कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम संबंध ज्ञान समझते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम किसका भजन कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। जैसे अकाल आप हमने छोटी सी बात करी थी कि ब्रह्म उनकी अंग कांति है, तो भगवान कितने महान हैं, तो तीन घरों में कम से कम व्यवस्था हो गई कि जो हमारे बर्तन है घर के वह भगवान के किचन में नहीं जाएंगे। एक में शायद सरकार ने भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, एक में पास हो गया है और एक में युद्ध चल रहा है। उनके घर से फोन आया कि हमारी बच्ची झगड़ा कर रही है कि खाना यहाँ हमारे जो बर्तन है वो किचन में क्यों जा रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन वो बच्ची जो झगड़ा कर रही है वो झगड़ा शास्त्र के आधार पर है, लोग सोच रहे पागल हो गई है या छुआछूत मान रही है, छुआछूत नहीं है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, समझ रहे हैं। तो आप थोड़ा शास्त्र सुनते हैं तो जब हम अपराध कर रहे थे चलता है, अब ठाकुर जी तो खाते ही हैं क्या है, तो उस भावना से बाहर निकलेंगे ना जब श्रवण करेंगे। अपराध तो है, ऐसा अपराध वो नहीं होता जो हम मानते हैं, अपराध वो है जो भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं। हम तो सब सबरी तो है हम लोग, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब सबरी हो गए हैं, सब इसी प्रकार से तो नहीं हो गए ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति शास्त्र के अनुसार सुने कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। We have to be little respectful also. It is very respectful, not only little respectful. खैर जो भी है, भगवान के बारे में हम समझते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में समझते हैं, तो हमारा कोई अज्ञान भगवान के बारे में नहीं रहता। कृष्णेर स्वरूप षड्विध विलास प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। कृष्ण के स्वरूप के छह प्रकार के विलास होते हैं, एक होता है प्राभव और एक वैभव, ये दो। अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविध अवतार बाल्य पौगंड धर्म द्वित प्रकार। अब कह रहे प्रभु जी तो बड़ा आप, पहले विलास था प्रकाश था, अब प्राभव आ गया और वैभव आ गया, हमारा तो बहुत पराभव हो गया, हम तो परेशान हो गए इतने तत्व। तो आप ऐसे व्यक्ति की पूजा कर ही नहीं रहे जो आसानी समझ में आ जाते हैं। अब भक्त लोग कह रहे हैं चार्ट बनाओ, ये बनाओ। ईमानदारी की बात है, कहीं कहीं मुझे भी कुछ संदेह है, इसीलिए मैं कुछ चार्ट नहीं बना रहा हूँ कि चार्ट बना के कुछ गलत नहीं समझा दूँ। मुझे भी कुछ कुछ थोड़ा दिक्कत हो रही कहीं कहीं, और फिर आप मैं सोचे कि मुझे ही दिक्कत हो रही है। अनंत कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि इसमें दिक्कत होती ही है, संदेह है ही, कौन किधर से विस्तारित हो रहा है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आता। तो मोटा मोटा हम समझ लेते हैं प्रभाव और वैभव रूप में। प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रभाव वैभव को बता रहे हैं, क्या देखिए, प्रभाव तथा प्रभाव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णता शक्तिशाली होते हैं, किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि और उसमें भी क्षणिक तथा शाश्वत उतना नहीं जा रहे हैं, फिर हमको भी समझ में नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि बस इतना ही समझ लें कि प्रभाव और वैभव रूप होते हैं। इसके लिए अलग सेमिनार मुझे करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी चल रही है, शायद परम पूज्य वृंदावन चरण महाराज भी समझा देंगे आकर के। तो मैंने उनसे कब ये मत पूछिए, वो बता रही हूँ, जब उनका इच्छा होगी। मैंने अनुरोध कर दिया कि महाराज जी एक बार आप समझा दीजिए तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सारी बातें। तो ठीक है, हाँ तो बोल दिए, हाँ बोल देते मतलब कर ही देंगे क्लास, लेकिन अब कब करेंगे उनकी इच्छा। कह रहते हैं महाप्रभु का आ रहा है आविर्भाव, तो उस बीच में एक शादी क्लास कर दी जाए। तो इतना समझ लेना चाहिए प्रभाव और वैभव और अंश शक्तावेश रूपे द्विविध अवतार बाल पौगंड धर्म द्वैते प्रकार। उनके अवतार दो प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्तावेश। वे दो अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल तथा पौगंड कुमार अवस्था। ठीक है, इतना बस बोलूंगा, आगे बता नहीं रहा कुछ। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी क्रीड़ा करे ए छये रूप विश्व भरी। इतना भी नाम समझ लीजिए, प्रभाव वैभव अंश शक्त्यावेश और बाल्य और पगंड, इन छह रूपों में कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं, विस्तारित करते हैं। कृष्ण का जो किशोर रूप है, नव यौवन रूप है, वह स्वयं अवतारी, वह उनका मूल रूप है। जो 14-15 साल का जो किशोर रूप है भगवान का, वह स्वयं रूप कृष्ण कहलाते हैं। क्रीड़ा करे ए छह रूप विश्व भरी, वह भगवान क्रीड़ा करने के लिए इन छह रूपों में विश्व में अपना विस्तार करते हैं, ब्रह्मांड भर में। ए छय रूप होए अनंत विभेद, अनंत रूप एक रूपे नाही किछु भेद। यह छह रूप के भी अनंत अनंत विभेद हैं। अब शक्तावेश कह दिया तो उसके बहुत सारे विभेद हैं, स्वांश कह दिया बहुत सारे विभेद हैं, प्राभव कह दिया बहुत सारे भेद हैं, वैभव कह दिया बहुत सारे भेद हैं। तो मूल जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो छह है, प्राभव वैभव अंश शक्तावेश बाल और पौगंड। अब इसके बहुत सारे भेद हैं। प्रभुपाद जी इसको बड़े अच्छी तरह समझा रहे थे, आज मैं उनका प्रवचन सुन रहा था, कि सूर्य तो वैसा ही होता है, लेकिन सुबह हमको अलग अलग समय में सूर्य अलग अलग रूप में दिखता है, ये हमारी बात है, अन्यथा सूर्य तो एक ही तरह एक ही वस्तु है। तो इसी तरह कह रहे हैं अनंत रूप एक रूप नाही किछु भेद, भगवान का रूप एक ही है और वह अपने आप को विभिन्न रूप में विस्तारित करते हैं। मुकेश प्रभु इनको गद्दी लगा दी जाए, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं आप। नहीं, अरे भाई इस क्लास में सोइए मत, क्या और क्लास में सो सकते हैं? अब अगर जो आपका बोलने वाला है वहां पर डांटे नहीं तो वहां भी सो सकते हैं। तो मैंने देखा कि कभी कभी भागवत में बगल में खर्राटे तक मारने लगते हैं। हमने कहा भाई प्रश्न करने का समय अभी नहीं है। इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करिए। क्या लिया अब यहाँ, भगवान के स्वरूप के बारे में समझ में आया? आपने क्या सुन रहे हैं, भगवान के स्वरूप और उनकी शक्तियों के बारे में आप जान लोगे तो भगवान के संबंध में आपका अज्ञान नहीं रहेगा। स्वरूप के बारे में आपने क्या सुना, प्राभव वैभव अंश शक्तावेश बाल और पगंड, ये छह और उसके अनेक अनेक विभेद हैं। अब शक्ति के बारे में बता रहे हैं, चित शक्ति, ये समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? कृष्ण परम भगवान है, उनसे कोई श्रेष्ठ पर तत्व नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है। अब यह एक बात और समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे स्वरूप का वर्णन क्यों हो रहा है, जितने भी अन्य विष्णु स्वरूप हैं उनके आधार कृष्ण है, ये बात बोली जा रही है, इसलिए सब बातें बोल रहे हैं। नहीं तो आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे ना कि ये सब बात क्यों बोल रहे हैं। बात आई थी ना दशम स्कंद में आश्रय तत्व का वर्णन हुआ है, तो ये समझा रहे हैं कि जितने भी अन्य विष्णु तत्व हैं, जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, उनके स्रोत भगवान कृष्ण है, इसलिए ये सब बातें बोल रहे हैं। छह स्वरूप हुए ना, प्रभाव वैभव अंश शक्तावेश और बाल और पौगंड, इनके आश्रय कौन है?
भगवान कृष्ण। तो इस स्वरूप का समझ में आ गया ठीक से, ठीक है। अब उनकी शक्ति के बारे में बोलना है। चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम तहार वैभव अनंत वैकुंठादि धाम। ओके, वो कह रहे हैं चित शक्ति जिसको भगवान की स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति कहते हैं, उनका वैभव उनका विलास जो है वो अनंत वैकुंठ आदि धाम है। इसका मतलब वैकुंठ है या शिवम कोई डाउट है? हमारा घर तो वैकुंठ नहीं है ना, मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों के मन में धारणा हो सकती है घर ही हमारा स्वर्ग है, और मैं कहूं घर ही नरक है तो हाँ, क्या माता पिता ही भगवान है, घर ही हमारा स्वर्ग है, और इसका मतलब इंद्र भी आप हो और पत्नी सची देवी है, सची है कि नहीं यही अर्थ हुआ और तो कोई अर्थ नहीं हो रहा। जो भी कह रही है, मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं चाह रहा हूं कि एज फार एज पॉसिबल कटाक्ष नहीं करूं, लेकिन आदत है तो आ जाती है सामने से। दिन भर में कोई ऐसी बातें बोल देता है कि इतनी हंसी आती है, लेकिन अभी चलो क्लास में नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। तो भगवान की चित शक्ति को ही स्वरूप शक्ति कहते हैं, जो उनके स्वरूप से सीधे उद्भूत होती है, उसी को अंतरंग शक्ति, अलग अलग नाम रखे गए, वो एक ही वस्तु है। तो अब समझ में आया ना, अंतरंगा जो उनके अंतरंग है, इंटीमेट है, इंटरनल पोटेंसी, और उन्हीं से वैकुंठ आदि धाम प्रकट होते हैं। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण ताहर वैभव अनंत ब्रह्मांडे रगण। उनकी जो माया शक्ति है, दुर्गा देवी जिसे कहते हैं, वो बहिरंगा है, बाह्य अंग वाली, और वह जगत के कारण है। उनका वैभव क्या है? अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक ही नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। दोनों दो शक्ति समझ में आई, स्वरूप शक्ति चित शक्ति, ये दो शक्तियां हैं। हाँ, जानबूझ के मैंने ऐसे बोला, चित शक्ति स्वरूप शक्ति और अंतरंग शक्ति, ये भगवान की तीन शक्तियां होंगे, है ना? नहीं, ये एक ही शक्ति, दो भी नहीं, ये एक ही शक्ति के नाम है। चित शक्ति, स्वरूप शक्ति और अंतरंग शक्ति, ये सब एक ही शक्ति का नाम है, ये भगवान के। हाँ, ये इससे वैकुंठ आदि प्रकट होते हैं, और यहाँ पे दो शक्तियों का नाम है, माया शक्ति और बहिरंग शक्ति, है ना? नहीं, ये एक ही है, माया शक्ति और बहिरंग शक्ति एक ही है। उनका एक और नाम क्या है? मैया, दुर्गा देवी जी। यस, ओके। तीसरी शक्ति, जीव शक्ति तटस्थाख्य नहीं जार अंत मुख्यति न शक्ति तार विभेद अनंत। और उनकी तटस्था शक्ति को जीव शक्ति कहा जाता है, या कहेंगे जीव शक्ति उसको तटस्थ कहा जाता है। अब जरा समझ लीजिए तट का अर्थ क्या होता है, तटस्थ का अर्थ क्या होता है, तट पे स्थित। मान लीजिए हारमोनियम का कोई कॉर्नर है, कॉर्नर है, उसको तट मान लीजिए, इधर है समुद्र और इधर है भूमि। तो तट पर स्थित मतलब यह समुद्र में भी जा सकता है और भूमि पे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है तटस्थ का अर्थ? बॉर्डर पे। हाँ, ये शब्द आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। कभी कभी जो बड़े अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो एकदम 34-35% पे अटक जाते हैं। अब समझ में आया, 33% होता है ना, 33.3% होता है पास होने का। कभी हुआ आप लोगों के संग किसी के संग? जब मुझे पीछे हाथ खड़ा कर रहे हैं तो फिर हनुमान जी को बूंदी चढ़ाई जाती है कि 33 से 1% खिसक करके इधर आ जाए तो हम पास वालों की श्रेणी में आ जाएंगे, और अगर हनुमान जी को बूंदी लगी कम तो खींच करके गदा मार करके 32.5 पे ले आ गए तो फेलियर में चले जाएंगे। अब समझ में आ रहा है तट पे स्थित, तट जो बॉर्डर लाइन केस होता है वो किधर भी जा सकता है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा है, ये तो कभी नहीं दिया, ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है तट पे स्थित? माता जी, अब तो टीचर रही हो, बहुत सारे बॉर्डर केस देखे ना आपने, 33% वाले, तो उन पर कृपा करके पास करते हैं कि नहीं करते हैं टीचर? वैसे हम सब लोग बॉर्डर लाइन केस ही है। बॉर्डर लाइन केस क्या है? फेल ही है। बलराम प्रभु कह रहे थे भगवान कृष्ण तो कुछ नंबर पास, कह रहे पास हो जाओ। महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु कह रहे बेटा एग्जाम देने की जरूरत नहीं, खाली तुम क्लास में आके बैठ जाओ, पास कर दूंगा मैं तुमको, तुमको लिखने की जरूरत भी नहीं, तुम खाली आके बैठ जाओ, तुमको पास कर देंगे, इतने दयालु हैं वो। ठीक है, तो आप समझ गए तटस्थ शक्ति के बारे में। तो तीन शक्ति आप समझ में आया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति। जीव शक्ति तटस्थ, एक गंभीर बात सुनिए, बहुत गंभीर है और प्रेरणादायक बात भी है। गंभीर बात यह है कि हम कभी भी माया का चुनाव कर सकते हैं,
इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना परफेक्ट हो गया हूं कि अब मुझे साधना करने की जरूरत नहीं। जब तक आप गोलोक नहीं पहुंच जाते तब तक साधना में कोई ढिलाई नहीं। क्या आजकल बोल रहे हो, जब तक दवाई नहीं तब तक क्या, तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है? नहीं, जब तक आप गोलोक में, जब तक पहुंचाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक गोलोक पहुंच नहीं जाते तब तक कोई ढिलाई नहीं कि आज तो थोड़ा आलस आ रहा है, अब क्या जप करें। नहीं नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना होगा। समझ रहे हैं? जब तक पहुंचाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक आप कृष्ण के पास पहुंच नहीं जाते तब तक कोई ढीलापन नहीं करना। तीनों शक्ति समझ में आ गए। फिर कह रहे तार विभेद अनंत, उनके बहुत विभेद हैं, इसमें बहुत सारे भेद हैं। इस प्रकार से एमत स्वरूप गण आरती न शक्ति सबार आश्रय कृष्ण 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 सबार स्थिति। इस प्रकार से एमत उनका स्वरूप गण, उनके स्वरूप का वर्णन हुआ और उनकी तीन शक्तियों का वर्णन हुआ। इन सभी के आश्रय कृष्ण है, कृष्ण से ही सभी की स्थिति होती है, सभी की सत्ता कृष्ण के द्वारा ही होती है। यद्यपि ब्रह्मांड ग्रणेर पुरुष आश्रय से पुरुषादि सबार कृष्ण मूल आश्रय। यद्यपि जितने भी ब्रह्मांड गण हैं उनके आश्रय कौन है, ये पुरुषावतार महाविष्णु से शुरू होकर के, लेकिन उन पुरुषादि के भी मूल आश्रय कौन है, भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर। स्वयं भगवान कृष्ण है और वह कृष्ण सभी के आश्रय है, परम ईश्वर कृष्ण है, यह सभी शास्त्र कह रहे हैं। ये तो अब श्लोक आपके सामने सभी को आता ही होगा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कौन है, कृष्णा, और उनका विग्रह कैसा है, सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद, उनकी आदि कोई नहीं है, उनकी शुरुआत कोई नहीं और वह सभी के आदि हैं, उनका नाम गोविंद है और वह सभी कारणों के कारण है। बहुत आसान है श्लोक। ए सब सिद्धांत तुमी जाना भाल मते तबु पूर्व पक्ष कर आमा चालाईते। ये सब सिद्धांत तुम भली भांति जानते हो लेकिन पूर्व पक्षी तुम विपक्ष हो में हो करके मुझसे धोखा करना चाहते हो। आमा चलाईते, हमें चला रहे हो, सुना आपने शब्द हिंदी में सुना है ना, हमें चलाते हो। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य को हराते हैं तो वहां भी छल करने का प्रयास करते हैं ये वो, लेकिन महाप्रभु उन्हीं के आर्गुमेंट पूरा ध्वस्त कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण वाले शास्त्र बोलने में नहीं जानते हैं या उनको नहीं जानना चाहिए, अपितु जब यमदूत कहते हैं, विष्णुदूत कहते हैं तुम हो कौन जो तुम इस अजामिल को लेने अकेले आए, तो उन्हें कहा कि हम यम के किंकर हैं, हम उनके सेवक हैं, हम धर्मराज के सेवक हैं। तो बोलो कि, तो फिर उसके बाद वहां पे विष्णुदूत कहते हैं कि तुम अगर धर्मराज के सेवक हो तो ये बताओ धर्म क्या है। तो प्रभुपाद वहां पे कहते हैं कि इस्कॉन के भक्तों को कृष्ण भावना के सिद्धांत समझना चाहिए और नहीं तो कोई पूछेगा तो आप कहेंगे हाँ। प्रभुपाद जी भी एक मेरे पास एक कोटेशन है, कहते हैं सब श्लोक आपको बोलने आने चाहिए, कोई पूछ दे भाई भगवद गीता के श्लोक की व्याख्या करो हाँ? तो समझ जाएगा कि खाली बेचते हैं, ये लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करी है, जो हम तो खैर हिंदी पढ़ लेते हैं लेकिन जो लोग हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक को डायक्रेटिक में लिखा है ताकि हम लोग उसे बोल लें, उसे पढ़े। एक बात मुझे अच्छी लगी, एक भक्त बोले कि वो प्रवचन में नहीं आएंगे लेकिन कहे एक बात हमें समझ में आ गई कि आप लोग ब्राह्मणिकल कल्चर डेवलप कर रहे हैं। हमने कम से कम इतनी बात तो उनको समझ में आ गई कि यहाँ पे, और आप देखिए मैं मान रहा हूँ कि शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन एक बार आपको समझ में आने लगा तो आपसे रहा नहीं जाएगा इसमें। बहुत बहुत सुंदर बात देख रहे, कितने सुंदर तरीके से, कितनी युक्तिपूर्ण तरीके से भगवान को, कृष्ण भगवान है ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। से अव कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। तो वे कृष्ण अवतारी ही जो ब्रजेंद्र कुमार हैं, नंद बाबा के बेटे हैं, वही चैतन्य के रूप में अवतारित हुए हैं। अब आप लोग देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसका टाइटल है और पूरे अध्याय में किसका वर्णन हो रहा है, कृष्ण का। तो आप सर खुजाएंगे भाई इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहां से आया, ये तो समझ में नहीं आया ना। अब समझ में आया, और उसकी अपने 1.2.22 में बहुत सारे कोटेशन दिए गए हैं जहां स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ठीक है।
ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार एक भक्त बोल दिए कि हम मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो मुझे बड़ा खराब लगा। हमने ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि केवल हम मानते हैं? क्या ये केवल हमारी भावुकता है कि हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में मानते हैं? क्या ये हमारी भावुकता मात्र है? क्या चैतन्य उपनिषद हमारी भावुकता में लिखा गया है? शास्त्र का वचन है कि नहीं? एक बार भक्त पूछे भी तो आप बता सकते हो, वहां पे कोटेशन सारी दी गई है, 1.2.22 आदि लीला चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 22 में तात्पर्य में सब बताया गया है। ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। जब भी कोई बोले, चाहे सीनियर डिवोटी या जूनियर डिवोटी, आप पूछ लीजिए, अगर आपको संदेह है प्रभु जी इसका रेफरेंस क्या है, इसमें कोई अपराध नहीं है। ऐसे मन से हमें किसी के मत सुनने में कोई हमारा रुचि नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग बद्ध हैं। और अगर आप मुक्त होते तो आप शास्त्र की बात कहते। सीधी बात है कि नहीं? मुक्त होते तो आपको ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता, तो वह तो सीधी बात है। जैसे मेरे गुरु महाराज ने एक बात बोली, इट इज नॉट हाउ मेनी राउंड्स विच यू आर चैंटिंग दैट यू आर एडवांस्ड, बट हाउ मच सेल्फलेस यू आर। इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कितने माला जप कर रहे हैं, इस बात में निर्भर करता है कि हम कितने निस्वार्थ हैं, उससे निर्धारित करता है कि हम कितने आगे प्रगतिशील भक्त हैं। अब यही बात, ये बात मैंने यहां ग्रहण करी। मैंने अच्छा, फिर परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे अहेतु की अप्रतिहता वाली बात पे, सवैपम साम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे। बड़ी सुंदर बात है, जरा उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति हमसे अधिक भजन करता हुआ दिख सकता है। देखिए, मैं ये एक विशेष बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो सब लोग अधिक भजन कर रहे हैं वो सब इसी तरह से आ जाएंगे। कोई व्यक्ति बोल रहा हूं, इसलिए ए को ए ही सुनेंगे। ए क्या सुनाई पड़ रहा है? ए ही, बी नहीं। कोई व्यक्ति आपको बहुत अधिक भगवान कृष्ण का भजन करते हुए दिख सकता है, लेकिन उसके पीछे एक भौतिक हेतु हो सकता है। तो वह अभी उतना प्रगतिशील नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई भक्त उतना आपको भजन करता हुआ ना दिखे, लेकिन उसकी भावना निष्काम है। हे भगवान, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है भक्तों को? मेरे एक मित्र थे, एकदम दो आंखी देखी बात है, ऐसे इतनी भक्ति नहीं करते हैं, अभी भी मित्र ही है, अभी दो माला करते हो कुछ। तो उनके जब वो आईआईटी में थे, मेरे अच्छे मित्र थे, तो उनके भाई का एग्जाम होना था आईआईटी में, एंट्रेंस एग्जाम। उसने प्री क्वालिफाई कर लिया और मेंस का एग्जाम था, और मेंस के जस्ट पहले बुखार आ गया, बेचारा क्वालिफाई नहीं कर पाया। एकदम सच्ची घटना। एक साल बाद फिर से, और मैं देखा आज प्रभु जी तो आज कॉलेज भी नहीं गए, जबकि एक भी क्लास नहीं मिस करते थे, एक भी क्लास नहीं मिस करते थे, पढ़ा जाते थे। और आने का आज क्या बात है, मंगल आरती आए, जप कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। हमने कहा दोपहर में लौट के आए, शाम तक किए जा रहे हैं। हमने क्या हो गया आज? मैंने कहा इतने गंभीर हो गए आप सुबह से शाम तक? बाद में चला कि भैया का आज मेन एग्जाम था और भैया का हो भी गया। अब मैंने पूछा आ जाओ भाई जूम पे जप करने के लिए, तो बोला नहीं। वो हमने कहा क्यों नहीं आए? नहीं आए तो सही, नाम अपना लिखा, लेकिन पत्नी आई जब करने के लिए, वीडियो ऑन नहीं किया। मैं गुणगान भी कर दिया कि हाँ आइए। बाद में बोला नहीं प्रभु जी मैं नहीं आया था, मैं तो बच्चों को क्या कहते हो छोटे क्या कहते हो छोटी साइकिल आई थी, बच्चों को साइकिलिंग कराने ले जा रहा सुबह 5 बजे। मैं खून का घूंट पी के रह गया। हमने कहा क्या, तो आप देख रहे हैं ना, एक समय में वो 52 माला पता नहीं कितना माला कर दिए, तो क्या वो बहुत एडवांस्ड हो गए? ओके, माला किया, बट इट डजंट मीन इट्स वेरी एडवांस्ड। तो आप देख रहे हैं, जो महाराज जी से सुना वही शास्त्र से भी सुन रहा हूं। डजंट मेक सेंस, महाराज स्पॉन्टेनियसली इस बात को बोले, बट वो बात गलत नहीं जा रही है, बिकॉज देयर इज अ रियलाइजेशन व्हिच ही गेट्स बाय भक्ति, इट विल नेवर गो रॉन्ग। लेकिन हम अपने मत से कुछ बोलेंगे स्पेशली इस अवस्था में, तो हमारा मत ही होगा, उसमें गड़बड़ ही होगा। परम पूज्य राधावन महाराज जी को पूछा, ये सुभद्रा जी कौन है गौरंग वहां प्रभु की लीला में? तो महाराज बोल रहे थे सुभद्रा जी भगवान कृष्ण की छोटी बहन है। यानी गौरंग महाप्रभु की लीला में कौन है? तो महाराज बोले हमको नहीं पता है, और नहीं पता है तो हम गलत ही बताएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बताएंगे। आई लाइक दिस आर्ग्यूमेंट, वेरी नाइस वे, इज इट नॉट? झूठ मूठ में क्यों बोलना? कई बार प्रचारक ऐसा सोचते हैं कि हम बता देंगे कुछ बात और सामने वाले को पता नहीं है। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखिए कि जो भी बात हम बोलें वह शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। अतेव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे छिरो दशाई कहे की तार महिमा। इसलिए चेतन गोस्वामी परतत्व की सीमा है, न परतत्व परमेह, ये बात वहां पे श्लोक में आई थी। तो कह रहे हैं उनको शिरोदकशायी कहें तो यह उनकी महिमा नहीं है, क्योंकि ये समझ में आया क्यों, भगवान कृष्ण परम तत्व है और चेतन महाप्रभु वो भगवान कृष्ण है, तो इसलिए चेतन महाप्रभु भी परतत्व की सीमा है, वह ही परम सत्य है। अब वो कह रहे हैं कि कोई इनको शिरोदकशायी विष्णु का अवतार कहे तो यह कोई उनकी महिमा नहीं कही जा रही है। सेत भक्तेर वाक्य नहीं व्यभिचारी सकल संभवता ते यत अवतारी। लेकिन अगर ये किसी भक्त के वाक्य हैं तो ये गलत भी नहीं है। अब देखिए कैसे सटल करते हैं, सकल संभवता ते यत अवतारी, जो ये सब कुछ संभव है जब भगवान अवतारी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अवतारी देह सब अवतारे स्थिति केहो को न मते केहे जे मन यार मति। जब अवतारी भगवान आते हैं तो उनके अंदर सारे अवतार आते हैं, तो जिसकी जैसी मति है वो कहता था है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके अंदर शिरोदकश विष्णु भी आते हैं, तो कहे भैया भगवान शिरोदकश विष्णु है तो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो समन्वय कर रहे। कृष्ण के कहे कह नर नारायण के हो कहे कृष्ण हो ए साक्षात वामन। कृष्ण को वो कहता है अरे ये तो नर नारायण है, सुना है आपने ये, हाँ, के हो कहे कृष्ण हो ए साक्षात वामन। और कोई कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण साक्षात वामन देव हैं। के हो कहे कृष्ण चिरो दशाय अवतार असंभव नहि सत्य वचन सभार। और कोई कहता है कि कृष्ण तो चिरो दशाय विष्णु के अवतार हैं, असंभव नहीं है, सबके सत्य वचन जो है वो सत्य है, एक ही बराबर सत्य है, क्योंकि जब कृष्ण आते हैं तो उनमें सारे अवतार होते हैं। अब फिर बात कृष्ण पे आ गई, क्योंकि कृष्ण और चेतन महाप्रभु तो वही व्यक्ति है। इसलिए केहो कहे परव्यो में नारायण हरि सकल संभव कृष्ण याते अवतारी। और कोई कहता है परमव्यो में जो नारायण हरि हैं वो सब उन्हीं के अवतार कृष्ण हैं, वो सब कुछ संभव है क्योंकि कृष्ण के अंदर सारे अवतार आते हैं। सब श्रोता गणेर करी चरण वंदन ए सब सिद्धांत सुन करी एक मन। सभी श्रोताओं के चरणों में कि चरणों की मैं वंदना करता हूं, ये सब सिद्धांत सुनिए एक मन करके, कहीं मन और नहीं लेके जाइए। अरे बहुत बोरिंग लग रहा है, सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस यहां है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसको तो हम 6 बार बोलेंगे, 1 बार हो गया, बोलो। सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अरे सिद्धांत ये है, कोई कहानी नहीं आई, रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ, लाला के जन्म स्थान नहीं, जन्म नहीं हुआ, चाय भी नहीं मिली, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत सिद्धांत बोल करके आलस मत करो, सिद्धांत अगर समझेंगे तो यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कृष्ण का ही भजन करना है, इस प्रकार से मेरा मन स्थिर हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। भक्त प्रभु जी हाउ टू बिकम फिक्स्ड इन भक्ति, बड़ी दैन्यता में लोग पूछते हैं प्रभु जी हम भक्ति में दृढ़ कैसे हूं। सिद्धांत सुनिए, सिद्धांत सुनेंगे तो मन आपका भगवान में ठीक से लगेगा। तो ये श्लोक आपको जरूर याद करना है, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ठीक है नकुल प्रभु, यहाँ पे ये होगा जो आप देख रहे ना, ऐसे होता है रोज, इसी प्रकार से मैं टॉर्चर करता हूँ लोगों को। ठीक है, तो आप आ गए टॉर्चर होने के लिए, गुड गुड, थैंक यू। एक और फंस गया विक्टिम। चेतन महिमा जाने ए सब सिद्धांते चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान होते। चेतन महिमा जाने ए सब सिद्धांत, इस सिद्धांत से आप चेतन महाप्रभु की महिमा को समझोगे, चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान होते। जब भगवान की महिमा का ज्ञान होगा तो चित्त उसमें दृढ़ता से लगेगा, नहीं मुझे भगवान की पूजा करनी ही है। चेतनर प्रभुर महिमा कही बार तरे कृष्णर महिमा कही करिया विस्तारे। इसका अर्थ क्या है, मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। सब आपको समझ में आ रहा हो कि सब बातें क्यों हो रही हैं। चैतन्य गोसाईर ए तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य गोस्वाई के बारे में निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ के चरणों की आशा करते हुए ये चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो दूसरा अध्याय भी आज पूर्ण हुआ, दो ही बार में पूर्ण हो गया, दो ही उसमें, अच्छी बात है। अच्छा अभी कोई प्रश्न है? अरे आज तो कोई मैं बच गया, कोई प्रश्न नहीं किया भक्त ने लगता है, ओ थक गए बेचारे सुनते सुनते। एक एक प्रश्न है, क्या ये श्लोक संस्कृत में है या बंगाली में? वाओ अच्छा प्रश्न है, आपको क्या लगता है, आपका क्या रियलाइजेशन है, व्हाट इज योर रियलाइजेशन? ये बंगाली में ही है और संस्कृत श्लोक भी संस्कृत में ही है, उसको बंगाली में लिख दिया है कृष्णदास कवि गोस्वामी। अच्छा प्रश्न है, रामायण होने के बाद राम कौन था? ठीक है कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग पारायण कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग रुकेंगे। 14 श्लोक का पारायण है, कोई खास कठिन नहीं है।